ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन 5 सूत्रीय निष्कर्ष के साथ हुआ संपन्न। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कल से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम करेगी शुरू। कार्यक्रम अंतर्गत मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार नागरिकों और पार्टी पंक्ति से करना होगा प्रत्यक्ष संवाद। देश के ज्यादातर स्थानों में हो रही है बारिश, सतर्कता बरतने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने किया आग्रह। रोलपा, बाजुरा और जाजरकोट के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा भौगर्भिक अध्ययन। और इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप की चपेट में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 50 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज 5 बिंदुओं के निष्कर्ष के साथ संपन्न हो गया। पूर्व महामंत्री डॉ शशांक कोइराला की अध्यक्षता में काठमांडू में आयोजित सम्मेलन में फैसला लिया गया कि 14वें महाधिवेशन से निर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय और आयोजन के तहत 15वां महाधिवेशन कराया जाएगा। सम्मेलन ने देश की मौजूदा स्थिति को गंभीर बताते हुए राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ संवाद कर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को मजबूत करने और सनातन धर्म को देश की पहचान के रूप में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा वर्तमान संविधान में जनभावना के अनुरूप जरूरी संशोधन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सभी संबंधित पक्षों से संवाद कर समाधान निकालने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में पेश प्रस्तावों और सुझावों को समेटकर अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी एनपी साउथ की अध्यक्षता वाली समिति को दी गई है। समापन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री और निवर्तमान पार्टी सभापति शेर बहादुर दिवा ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का व्यापक समर्थन मिला है। वहीं डॉ शशांक कोइराला ने कहा कि सम्मेलन से पार्टी को एकजुट करने में मदद मिलेगी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगामी भाद्र महीने से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी का कहना है कि इसका उद्देश्य नेताओं को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाना है। कार्यक्रम के तहत पार्टी के मंत्री महीने में कम से कम एक बार केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम के पहले चरण में मंत्री नागरिकों की शिकायतें, समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव सुनेंगे। दूसरे चरण में मंत्रियों, केंद्रीय समिति की सदस्यों और सांसदों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें नागरिकों से मिले सुझावों और समसामयिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के संसदीय दल के सचेतक प्रकाश चंद्र परियार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की आवाज को सीधे सरकार की नीति और क्रियान्वयन के स्तर तक पहुंचाना है। सरकार पश्चिमी नेपाल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भूगर्भीय अध्ययन करेगी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में रोलपा, बाजुरा और जाजरकोट के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में प्रारंभिक भूगर्भीय अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 3 दिनों के भीतर विशेषज्ञों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाएगी। इस बीच रोलपा, जाजरकोट और बझांग के खोज, बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, मृतकों के परिजनों को सहायता और घायलों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने को कहा गया है। बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल, सिंचाई जैसी आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने तथा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि मॉनसून अभी सक्रिय है और पहाड़ी तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। लोगों से सतर्क रहने, जोखिम वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं का पालन करने की अपील की गई है। देश के अधिकांश स्थानों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के बाद जाजरकोट की भेरी नगरपालिका 2 रिसांग में आए भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लापता हैं। भूस्खलन की चपेट में घायल हो चुके 52 वर्षीय केदार कार्की की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में मृत्यु हो गई। वहीं लापता रहे 4 में से 54 वर्षीय उमा सिंह खत्री और 83 वर्षीय रति खत्री के शव बरामद हुए हैं। ये जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल ने दी। अभी भी लापता रहे लोगों को ढूंढने के लिए नेपाली सेना सहित सशस्त्र के इंस्पेक्टर कमल कार्की के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन तालीम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी की संयुक्त टोली को तैनात किया गया है। भूस्खलन से 8 घरों में क्षति हुई है। इस बीच कर्णाली प्रदेश सरकार ने रिसांग के भूस्खलन पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री मुहैया कराई है। इसी तरह रोलपा की लोंगरी गांव पालिका 5 धईरेनी में घर के ऊपर आए भूस्खलन में एक 72 वर्षीय वृद्धा अम्मी गुरुंग की मौत हो गई। बागलों की निसीखोला गांव पालिका 2 के धारा टोल में भूस्खलन गिरने से 8 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं करीब 40 घर भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं। वार्ड अध्यक्ष कुवीर विश्वकर्मा के मुताबिक भूस्खलन से कुछ घरों, तबेलों और शौचालयों को आंशिक नुकसान हुआ है। कई घरों की छत और बाहरी हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं और दीवारों में दरारें आई हैं। उन्होंने मॉनसून सक्रिय रहने के कारण दोबारा भूस्खलन गिरने की आशंका जताते हुए जोखिम वाले परिवारों से सतर्क रहने की अपील की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मुताबिक देश भर में मानसूनी वायु का प्रभाव बना हुआ है। आज रात हिमालयी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम की पहाड़ी इलाकों में कई स्थानों तथा कोशी और बागमती के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश से जनजीवन के साथ कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण और सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जारी सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है। निकोबार एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि एमाले का गठन पद या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश में परिवर्तन और जनता की सेवा के लिए हुआ है। झापा के बिरता मोड़ में मिशन पार्टी जागरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ओली ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूर्वजों के त्याग और बलिदान से सीख लेकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने पार्टी को संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक रूप से मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि केवल वास्तविक सदस्यों का ही सदस्यता नवीकरण किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ओली ने कहा कि पद के पीछे भागने के बजाय देश और जनता के लिए त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना ही एमाले कार्यकर्ताओं की असली पहचान है। परराष्ट्र मंत्री शशि खनाल ने कहा है कि देश के रूपांतरण के लिए शिक्षा क्षेत्र में बौद्धिक बहस और आंदोलन जरूरी है। काठमांडू में ग्रामीण आदर्श बहुमुखी कैंपस की पहली कैंपस सभा का उद्घाटन करते हुए मंत्री खनाल ने कहा कि समाज और देश को सही दिशा में ले जाने में शैक्षणिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि नेपाल की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर गंभीर बौद्धिक बहस जरूरी है। केवल वेतन और भत्ते के लिए होने वाले आंदोलनों से देश का रूपांतरण संभव नहीं है। पूर्व मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ ने युवाओं को देश में ही रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाने को सरकार की प्राथमिकता बताया। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल के 4 दिवसीय दौरे पर आज काठमांडू पहुंचे हैं। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजाराम बस्नेत के मुताबिक राष्ट्रपति एवं नेपाली सेना के परमाधिपति रामचंद्र पोटेल कल राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित विशेष समारोह में जनरल सेठ को नेपाली सेना के मानद महारथी की उपाधि प्रदान करेंगे। इसी दिन नेपाल और भारत के दोनों सेना प्रमुखों के बीच जंगी अड्डे में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। नेपाल और भारत के बीच सन 1950 से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद महारथी की उपाधि देने की परंपरा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्र में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप के बाद फ्लोरेस द्वीप के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिसके मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव दल तलाश अभियान में जुटे हैं। भूकंप से 900 से अधिक घर ध्वस्त और करीब 450 क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिजली, संचार और सड़क सेवाएं प्रभावित होने से राहत पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। अधिकारियों ने लोगों से आफ्टर शॉक के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच रात भर हुए हमलों में दोनों देशों में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। रूस के तोव क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि बेलगोरोद में एक बस को निशाना बनाए जाने से एक महिला की जान गई। मॉस्को क्षेत्र में भी ड्रोन हमले में 83 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई। मॉस्को के मेयर के मुताबिक राजधानी की ओर बढ़ रहे 600 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। वहीं यूक्रेन में रूसी हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है। क्रिवी रिह और ज़ापोरिज़्या में लोगों की जान गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। कीव में भी हमलों के बाद आग लगने की घटनाएं सामने आई। रूस ने दावा किया है कि उसके हमलों में यूक्रेन के हथियार और ड्रोन के कल पुर्जे बनाने वाले ठिकानों, क्रेमेंचुक तेल रिफाइनरी और ओडेसा के पास एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन 5 सूत्रीय निष्कर्ष के साथ हुआ संपन्न। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कल से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम करेगी शुरू। कार्यक्रम अंतर्गत मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार नागरिकों और पार्टी पंक्ति से करना होगा प्रत्यक्ष संवाद। देश के ज्यादातर स्थानों में हो रही है बारिश, सतर्कता बरतने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने किया आग्रह। रोलपा बाजुरा और जाजरकोट के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा भौगर्भिक अध्ययन। और इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप की चपेट में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 50 से अधिक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।